ओम शांति। यहाँ बैठे हुए सभी तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, सारे के सारे। मेरा ख्याल है जो खुश नजर आ रहे हैं वो यहाँ बैठे हैं, और जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो कहीं इधर उधर है। जीवन में सबसे सबसे ज्यादा जो अनमोल खजाना है वो क्या है? हैं? सारी दुनिया जो कुछ भी करती है, चाहे राइट करती है, रॉन्ग करती है, किसके लिए करती है? हैं? क्या पाने के लिए? खुशी, सुख जो है ना, सुख तो एक तरह की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका जो प्रयोग नजर आता है कि किसी के पास बहुत धन है तो उसका प्रयोग जो है वही उसको जो प्रयोग में आ रही चीज वही काम की है। तो चाहे सुख है चाहे वैभव है, जो भी प्रयोग में लाते हैं किस लिए लाते हैं? खुशी के लिए। कोई गुस्सा भी करता है, क्रोध, किस लिए? सोचो जरा गौर से। कोई क्रोध करता है किस लिए? क्रोध करने से उसको क्या मिलता है? अपने ढंग की खुशी मिलती है ना, अर्थात वो दूसरे की खुशी छीन कर खुश होता है। भाई चलो इसकी खुशी मैं छीन लूं, उसको उदास कर दूं, मैं खुश हो जाऊं, गुस्से वाला यही सोचता है ना। इसी प्रकार से एम सबका खुशी का ही रहता है। कोई डाकू किसी को लूट लेता है किस लिए? उसको दुखी कर देता है, उसको गरीब कर देता है, किस लिए? खुशी के लिए। तो जीवन का लक्ष्य सबका क्या है? खुशी पाना, ठीक है। अब जो कुछ मैंने बताया, खुशी दो तरह की हो गई, ठीक है ना। एक खुशी हो गई क्या? दूसरे की लूट कर अपनी प्राप्त करना, और एक है अपनी भी रखना और दूसरे की भी क्या रहने देना, और एक है अपनी भी बढ़ाना और दूसरे की भी बढ़ाना, ठीक है। इसको लोग कहते हैं, एक होता है दूसरे के सिर पर जियो, एक होता है जियो और जीने दो, एक होता है दूसरों के लिए जियो, है ना। तीन तरह का जीवन होता है ना। तो सेवाधारी का जीवन कैसा होता है? फर्स्ट क्वालिटी या थर्ड क्वालिटी? फर्स्ट क्वालिटी होता है ना। तो फर्स्ट क्वालिटी क्या हुई कि अपनी भी खुशी बढ़ाओ, दूसरे की भी खुशी बढ़ाओ। दूसरे की खुशी छीन कर खुशी नहीं प्राप्त करो, ठीक है। और ये साधारण बात है कि वो भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, तुम अपनी जगह खुश रहो हम अपनी जगह खुश रहे, इसमें भी कुछ फासला है, ठीक है। तो हमने शुरू में जब हम यज्ञ में आए थे, आप जैसे ही थे, आप जैसी आयु के थे, इसी प्रकार से तो उस समय तो हमारे बाबा और मम्मा भी साकार में थे, हैं? उनके साथ हम रहे, उनसे हमने खेला भी, खाया भी, घूमा भी, सीखा भी। वो शिक्षा जो देते थे बोल कर नहीं देते थे, जो कुछ वो करते थे उसमें ही शिक्षा हो जाती थी। जैसे कोई बड़ा होता है ना, उसको देख करके दूसरा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। और हमारा स्लोगन भी है कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख के दूसरे करेंगे। तो हमने वहां उससे सीखा। तपस्या किसको कहते हैं? आपने शब्द तो सुना है ना, तपस्या सुना है ना। अच्छा, तपस्या किसको कहते हैं? साधु लोग तो आपको पता कैसे कैसे पोज में बैठकर तपस्या करते हैं। हमारी तपस्या भी सहज है, और हमारी तपस्या सदा की है। आप कोई भी एक, आजकल सोन्नति का चल रहा है ना, कोई भी एक धारणा कर लो उसमें तपस्या आ जाएगी। मान लो मम्मा थी तो मम्मा हमेशा हाँ जी करती थी, बाबा ने कुछ कहा तो मम्मा ने क्या कहना है? हाँ बाबा, जी बाबा। अच्छा, ये तो हमें भी बताया गया है। हाँ करने वाला क्या? आस्तिक। और ना करने वाला नास्तिक। कोई हाँ ना भी करते रहते हैं, है ना? दोनों बेड़ी में सवार होते हैं, हाँ भी है ना भी है। लेकिन एक भी शब्द ले लो हाँ जी, उसमें तपस्या आ जाती है। हमें याद है एक बार बाबा शाम की चाय के समय बच्चों को पहाड़ी पर ले जाते थे, कोई आसपास छोटी सी पहाड़ी हो उसके ऊपर ले जाते थे, और केतली होती ना चाय की बड़ी वाली, वो भी भाई लोग ले जाते थे, और फिर वहां थोड़ी सी बाबा चिट चैट करते थे, मम्मा चिट चैट करती थी, थोड़ा साइलेंस में बिठाते थे, फिर चाय भी पीते थे। तो एक बारी जो हमारा पहला पांडव भवन था, जो आजकल गवर्नमेंट ने ले लिया, उसके साथ ही पहाड़ी थी, तो वहां पर ले गए और बाबा ऊपर चले गए। बाबा तो हमेशा एक्टिव रहते थे, दूर दूर की जितनी ऊंची पहाड़ियां आप देखते हैं सब पे ले जाते थे, और अभी तो थोड़े रास्ते बन गए हैं पत्थरों पर, एक पत्थर पे पैर दूसरे पे रख के शिव बाबा करते हुए हम चलते थे। और ये फैक्ट था, शिव बाबा याद है तो कोई गिरेगा भी नहीं और पहुंच जाएंगे, और ऐसा ही होता था, बाबा सबसे आगे चले जाते थे। तो उस छोटी सी पहाड़ी पर बाबा चले गए और मम्मा नीचे थी बिल्कुल, तो बच्चों ने कहा, बहनों ने, बाबा आप भविष्य को सामने रख के मम्मा को, बाबा तो मम्मा को मम्मा ही कहते थे, मम्मा ने कह के कहो ओ राधे राधे कह के बुलाओ मम्मा को। हाँ अच्छा, तो बाबा ने ऐसे ही किया, ऊपर से कहा ओ राधे। अच्छा, फिर मम्मा थी नीचे, तो उन्होंने कहा मम्मा को, मम्मा आप बाबा को कहो ओ मोहन ये कह के बुलाओ। अच्छा अब है तो है ना, तो मम्मा ने कहा हाँ जी। मम्मा ने फिर बड़ा कहा ओ मोहन इमर्ज करके। तो मतलब यह है कि है साधारण बात, लेकिन उस रूप में जैसा मौका हुआ वैसे मैं हाँ जी करना, इसी को तपस्या कहते हैं। तपस्या का मैंने आपको ये एग्जांपल सिंपल किस लिए दिया कि कोई व्यक्ति एक ही धारणा कर ले, मुझे हाँ जी करनी है, समझ लीजिए, तो आपके आगे कई ऐसी परिस्थितियां आएगी जहां आपको हाँ जी नहीं करना होता, लेकिन आपको पता है कि बाबा ने कहा हुआ हाँ जी करो, और हाँ जी मैंने आस्तिक। तो जब आप हाँ जी करेंगे तो आपको कोई ना कोई शक्ति इमर्ज करनी पड़ेगी, है ना? तो मान लो दो व्यक्ति की बोलचाल नहीं है आपस में, अच्छा बहुत समय से बोलचाल नहीं है, बाबा समझो कहते हैं या दादी कहती है नहीं इसके साथ बोलो। अच्छा, अभी अगर आप ये सोचने लग जाएं कि इससे तो मेरी बोलचाल नहीं है, इसने मुझे इतना दुखी किया है, रोज मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अभी भी बोलने से क्या फायदा होगा, फिर इसने ऐसे ही करना है, तो आप हाँ जी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सोच लिया हाँ जी करना है, तो फिर जो दूसरी तरह के पॉइंट्स हैं, जो बाबा कहता है बिंदी लगाओ, पास को पास देखो, हिम्मत करो, आगे को पुरुषार्थ करना है, अपने कमजोरियों से मुक्ति पाना है, तो आप फटाफट कहोगे हाँ जी हम बोलते हैं, तो क्या हुआ, उसमें तपस्या आ गई ना। तो जो तपस्या आप बैठकर मेहनत कर करके अपने संस्कारों को, कड़े कड़े संस्कारों को तगत करने के लिए योग से करते हो, वो भी अच्छा है, वो तपस्या आपकी कर्म योग से हो जाएगी। ऐसे ही मान लो कोई सुबह आलस से उठते होंगे, उठते तो हैं, है? क्योंकि साथ वाले भी उठ रहे हैं। एक हमारी फिल्म बनी हुई है अमृत वेला, उसमें क्या दिखाते हैं उसको आप देखो तो आपको हंसी आएगी, कि वो बनाई हुई है ना, सबको कह रखा है कि कैमरा ऐसे आएगा तो उठना, 1 2 3 4 5 6 फटाफट वो चादर उठा के उठते जाते हैं, आर्टिफिशियल जैसा लगता है। लेकिन अगर आप अपने आप को टेस्ट करो कि हम अमृत वेले उठते हैं, अच्छा उठते तो हैं, अभी उठते हैं तो एक तो नॉर्मल उठते हैं, अच्छा भी उठ गए, थोड़ा आगे उठ गए, थोड़ा आलस से उठ गए, थोड़ा अंगड़ाई ले लिया, बाजू ऊपर करके टांग को सीधा कर लिया है। कभी कई जानवरों को आपने देखा हो ना सड़क के ऊपर, वो कैसे उठते हैं। अच्छा तो इस प्रकार से कर लिया। एक है कि नहीं, अब टाइम आ गया है और अब हमें अमृत वेले से पूरा लाभ लेना है, एक्टिव होकर उठना है। जैसे किसी को कोई ड्यूटी हो या कोई मजबूरी हो या कोई अस्पताल में जाना हो या कुछ हो, फांसी लगना हो, तो नींद नहीं आती ना। अच्छा तो वो उठेगा ना, तो अब ये भी एक तपस्या है कि जब आप उठें किस अवस्था में उठें। तो अगर आप उस अवस्था में उठेंगे तो आपकी तपस्या हो जाएगी। आप देखिए गीत क्या बोल रहा है कि सिर्फ दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, बाकी घड़ी क्या करना है। हाँ, ये गीत क्या कहता है? क्या ज्ञान युक्त अर्थ यही है कि अगर आप अमृत वेले उठकर प्रेम से और चुस्त होकर खुशी से प्राप्ति के अनुभव से बाबा को याद करेंगे तो फिर क्या होगा कि सारा दिन आपका वो योग लगा रहेगा, सहज ढंग से लगा रहेगा। तो वो दो घड़ी कौन सी? फर्स्ट वाली है, सुबह वाली, लास्ट वाली नहीं कि रात को सोने के वक्त प्रेम से दो घड़ी ध्यान कर लें, वो होगा भी नहीं अगर सारा दिन नहीं करेंगे तो। तो मैं तपस्या की बात आपको बता रहा था कि हमने ये देखा है कि तपस्या भी सहज हो सकती है। अब कोई व्यक्ति भारी कैसे होते हैं, ये ज्ञान में और तो सब कुछ सहज है, भोजन मिल जाता है, गीत से हम लोग उठते हैं, गीत से हम लोग सोते हैं, दिन में भी गीत बजते रहते हैं, क्लास में भी गीत बजता है, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, सारी दुनिया में चक्कर लगा के आ जाओ किसी राजा महाराजा के महल में भी इतने गीत नहीं बजते होंगे। आप देखिए आपके मन के गीत तो अलग बजते हैं, कहीं तो मन का रोना भी रोते होंगे मालूम नहीं, लेकिन ऊपर के गीत भी बजते हैं यहाँ पर। नहीं तो बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी गीतों की कैसेट रख लेते हैं, खरीद कर मशीनें भी रख लेते हैं, ना तो उनको गीत बजाने का मौका टाइम मिलता है, ना गीत को आनंद लेने का टाइम मिलता है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो फंसी रहती है। इसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है वो ठंडी रहने की वजह से, शांत रहने की वजह से आपका एक मिनट भी जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि एक मिनट में आप एक दिन का काम कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, ठीक फैसला भी ले सकते हैं। कई लोगों को फैसला लेने में करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, वो ऐसे ही करते रहते हैं। एक मिनिस्टर था, उसकी कार में तेजी से जा रहा था, उसकी कार के आगे कुत्ता आके मर गया। तो उसने अपने ड्राइवर को पूछा ये कुत्ता क्यों मरा, वो ड्राइवर डर गया कि भाई शायद मिनिस्टर साहब गुस्सा करेंगे, कुत्ता क्यों मरा, चुप रहा। उसने कहा मैं पूछ रहा हूँ ये कुत्ता क्यों मरा, फिर भी वो चुप रहा। तो उसने सोचा क्या बोलूं, फिर उसने कहा मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कुत्ता क्यों मरा, इसलिए मरा कि फैसला नहीं कर सका कि जल्दी से भाग जाऊं या पीछे रहूं, दुविधा में रहा इसलिए कार के नीचे आ गया। इसी प्रकार से जो व्यक्ति ठीक फैसला नहीं कर पाता उसका टाइम इधर उधर इधर उधर में जाता है। तो हम ब्राह्मणों का टाइम ठीक है, हमारी नबज ठीक है, हमारी तपस्या ठीक है, इसकी निशानी क्या है? इसकी भी एक निशानी है। हम जब मम्मा के साथ जाते थे तो मम्मा स्टेशन पर जाती थी, ट्रेन में चढ़ाना होता था, मम्मा को रिसीव करना होता था। मुझे याद है हम 21-22 बरस के थे दिल्ली में, तो मम्मा ने आबू से दिल्ली आना था। अच्छा, मैं और एक मेरा छोटा भाई भी था, 19 बरस का होगा। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि सुबह की गाड़ी से मम्मा ने आना है, तो हम रात को ही जाके ट्रेन से, एक रिवाड़ी स्टेशन है दिल्ली से, 2-2.5 घंटे उस वक्त लगते थे, वहां जाके स्टेशन पर बैठ जाते हैं और सुबह ना उसी गाड़ी में चढ़ के मम्मा के डब्बे में मम्मा के साथ दिल्ली आएंगे। और जैसे मम्मा का स्वागत होगा, सब लोग खड़े होंगे झंडियां लेकर, हमारा भी स्वागत होगा, है ना, ऐसे होता है। तो जो भी कभी किसी बड़ी दादी के साथ जाते हैं यही सुनाते हैं ना, ब्राह्मणियां वगैरह, हमारा ये स्वागत हुआ, हमारे पर फूल बरसाए गए। वो होता तो उनका है लेकिन साथ वाले का हो जाता। एक बार हम बड़ी दीदी के साथ सोमनाथ गए तो दो गाड़ियां थी, एक में हम थे और एक में दीदी थी, हमारे साथ भी एक दो जने थे। तो हर स्टेशन पर दीदी लेट हो जाती थी मिलते मिलाते, तो हमें बोल देती थी तुम जल्दी जाके वहां क्लास शुरू करना और मैं आ जाऊंगी। तो जब सोमनाथ के टाइम आया तो हम पिछले स्टेशन से, दीदी ने कहा जाओ, हम गए तो मेन प्रोग्राम सोमनाथ में ही था। तो वहां पर सारे गुजरात के 1500 के करीब बहन भाई इकट्ठे हुए हुए थे और काफी देर से वेट कर रहे थे, दोपहर हो गई थी। तो उन्होंने बाजा होता ना बैंड बाजा, वो भी मंगवाया हुआ था। तो उन्होंने देखा कि कार आ रही है सजी सजाई, उन्होंने बैंड बाजा बजवाना शुरू कर दिया। जब हमारी कार पहुंची उसने देखा, अरे नहीं नहीं इसमें ब्रिजमोहन भाई है, बैंड बंद कर दो। उन्होंने बंद कर दिया, तो दीदी तो है नहीं। अच्छा, तो खैर ऐसा भी होता है, तो साथ में तो सब कुछ होता है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम मम्मा को लेने चले गए, बड़ा शौक था, बड़ा जोश था, तो रात को जाके रेवाड़ी स्टेशन पर, सर्दियों के दिन थे, बैठ गए। तो उससे पूछा गाड़ी कितने बजे आएगी, तो उसने कहा जी ढाई बजे गाड़ी आएगी। अच्छा, तो वहां पर सर्दियों के दिन थे और रेलवे स्टेशन का नल बहुत मोटा होता है, खूब सारा पानी उसमें से आता है। आजकल की तरह नहीं, जैसे आबू पे लिखा हुआ है पानी की बचत करें, बहुत मोटा नल जैसे एक ट्यूबवेल हो। अच्छा, तो हमने ठंडे ठंडे पानी में नहा भी लिया, हमें पता ही नहीं लगा, लगा गर्म पानी है क्योंकि मम्मा ने आना था। अच्छा, स्नान करके बैठ गए तो वेट करते रहे, आखिर गाड़ी आई। तो हमने भाग भाग किया, गाड़ी तो 10 मिनट रुकती थी। एक डब्बे के आगे फूल लगे हुए थे, फूल सजाए हुए, हमने सोचा यही होगा डिब्बा। हमने ठक 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 करके उसमें घुस गए, गाड़ी चल पड़ी। तो वो था थर्ड क्लास का डिब्बा। तो हमने कहा मम्मा थर्ड क्लास के डिब्बे में तो आएगी नहीं, वहां कोई बारात थी उसके फूल लगे हुए थे। अच्छा, अब हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो बीकानेर की गाड़ी है, क्या करें। अच्छा, फिर हम बैठ गए उसमें, फिर आगे आए तो आगे एक और स्टेशन आता है घड़ी कुछ करके, वहां उतर गए। तो वो बिल्कुल उजाड़, वहां कुछ भी नहीं था, एक स्टेशन मास्टर, दो चार व्यक्ति। हम उसके पास गए, हमने कहा भाई हमारी मम्मा ने आना है। जब जोश से व्यक्ति बोलता है ना, पावर से, निश्चय से, तो दूसरा भी डर जाता है, स्टेशन मास्टर हो या कौन हो। हमने कहा देखो अभी अगली गाड़ी आएगी तो आपको उसको खड़ी रखना है जब तक कि हमारी मम्मा हमको मिल ना जाए। उसने कहा ठीक है। जिसने देखा ये रात के वक्त दो यंग लड़के आए हैं, बड़े जोश में हैं, हाँ हाँ ठीक है। हम फिर वो गाड़ी आई तो पर चांस जो था उसमें विश्वरतन दादा था, वो निकला पर चांस। तो हम फटाफट चले गए गाड़ी के अंदर और जाके बैठ गए। फिर बड़ी छाती तान के जब मम्मा के साथ निकले दिल्ली में, हम आ रहे हैं, साथ साथ स्वागत हुआ। तो बताना मैं ये चाहता था कि मम्मा को कभी भी हम कहते थे, आप जानकी दादी को भी करके देख लीजिए, किसी भी बड़ी दादी को स्टेशन पे चढ़ाना हो या कहना दादी जल्दी करो, मम्मा जल्दी करो, है वो गाड़ी चलने वाली है, क्योंकि लोग तो मिलते ही रहते थे, या इधर बाहर जाना है तो कार खड़ी है, तो वो कभी जल्दी नहीं करते थे। बिल्कुल उसी स्पीड पे उन्होंने चलना है जिस स्पीड पे वो चल रहे हैं। आप भले कहते रहो चलो चलो चलो, और आप तेज करोगे, उन्होंने उसी स्पीड पे चलना है। तो हमने सोचा ये क्या है, और कभी उनकी गाड़ी भी मिस नहीं होती थी, ये तो हमें भी अनुभव था कि कभी उनकी गाड़ी मिस नहीं होती थी। और क्योंकि आत्मा का बल है, गाड़ी लेट हो जाएगी वैसे कैसे मिस होगी, इतनी पावरफुल आत्मा है। लेकिन हमने ये देखा, ये भी एक तपस्या है कि अपने आप को साधा हुआ है। तो अगर आपने टेस्ट करना हो कि हमारी तपस्या कहाँ तक है, वैसे तो हमारा स्लोगन है कि अटेंशन से टेंशन नहीं रहता, लेकिन एक होता है खास अटेंशन देना कि भाई मुझे कल दिल्ली जाना है तो मैं नेचुरली अटेंशन दूंगा, वो खास है। लेकिन टोटल तौर पे हमारे दिनचर्या में हमारे को किसी प्रकार की तेजी ना करनी पड़े। पहले संकल्प चलते रहे, फिर कह रहे नहाने में देर हो गई, क्लास में लेट हो रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी नहाना शुरू करें, बाल्टी पर पांव आ जाए या पांव बाल्टी पर आ जाए, कुछ हो जाए या गड़बी गिर जाए या पानी गिर जाए या साबुन छूट जाए, ये निशानी उसकी नहीं है, तपस्या की निशानी नहीं है। तो इसी प्रकार से किसी भी काम में हरि करना है, या फिर तेज होना या ढीले होना। ढीला फिर क्या होता है कि जब ज्यादा ही लेट हो गए कहते चलो छोड़ दो, अब जाते ही नहीं। जैसे यात्रा होती है ना, यात्रा अभी भी मुरली आई थी कि तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तो यात्रा में भी ऐसे ही होता है। यात्रा में जो लोग स्लो चलते हैं ना, या कोई पैर में कांटा लग गया या बैठ गए या थक गए, थोड़ी दूर हो जाए तब तो चल पड़ते हैं साथ, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ज्यादा देर हो जाए तो कहते चलो अब घर ही चलते हैं, है ना, क्या जरूरत है जाने की। तो जो आलस्य है ये भी, या निराशा है ये भी असफलता से आती है, और उसका कारण यही होता है कि हमारी तपस्या नहीं है। इच्छा है भाग करके खरगोश की तरह, या तो बहुत तेज चले जाएंगे, कहेंगे ये यात्रा क्या है, हम इसमें जाके सबसे आगे हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर का जोश होता है। एक टाइम किसी बात में आगे हो भी गए, लेकिन टोटल फिर कई क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम मिस कर देते हैं। अच्छा, किसी किसी प्रोग्राम में जिसमें इम्पोर्टेंट है हाजिर रहे, किसी किसी प्रोग्राम में समझा ये तो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, उसको मिस कर दिया। अब कोई गीत गाए और गीत में दो लाइन मिस कर दे, फिर गाए, फिर कोई आवाज ढीली करे, बोले ना, या कभी बहुत जोर से बोल दे, तो गीत गिना जाएगा, क्या कहेंगे क्यों शोर कर रहा है। अगर गीत गाना नहीं आता तो भाई दूसरे को तो आराम से रहने दे। तो ऐसे भी पुरुषार्थी होते हैं, खुद तेज चलेंगे तो अपने साथी को भी कहेंगे तेज तेज चलना, अच्छा उसका चाहे सांस चढ़ जाए, और फिर स्लो चलेंगे कहेंगे धीरे धीरे चल, बड़ा लंबा रास्ता है, उसको भी खींच लेंगे। तभी बाबा ने कहा है कि तुमको जीवन मुक्ति पानी है, अर्थात किसी के साथ ऐसे नहीं बंधना है जो उसकी तेजी में आपकी तेजी आ जाए, उसके ढीलेपन में आपका ढीलापन आ जाए। क्योंकि संगठन के अंदर एक नेचुरल स्वभाव रहता है, आप देख लीजिए संगठन में कोई ना कोई टेम्परेरी साथी किसी को बना ही लेता है। खाने बनाने वाले होंगे वो भी दोनों इकट्ठे ही साथी बनेंगे, रोटियां लेट बनाएंगे फिर कहेंगे क्लास में भी लेट जाते हैं, तू भी रुक जा मैं भी रुक जाता हूँ, दोनों इकट्ठी पूरी करके चलेंगे। और जो जल्दी करेंगे तो फिर और जल्दी 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 कच्ची पक्की बनाओ और भागो, जो खाने वाला आप ही अस्पताल जाएगा, तुमने क्या लेना, तुम अपनी मुरली सुनो, ऐसा भी होता है। तो कहने का भाव ये है कि ये भी एक तपस्या है कि हम अपना स्वार्थ देखते हैं, सेवा किस भाव से करते हैं। कोई अच्छा प्रोग्राम हो गया, मान लो दादी जी बाहर से आ रही हैं, उनको रिसीव करना है, तो काम को कच्चा पक्का छोड़ के और चाह लाइन में लग गया जाके भी रिसीव करना है, और अपना काम छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इस वास्ते सेवा में भी आपका देखा जाता है, सेवा में स्वार्थ है। मान लो कोई बहुत अच्छी सब्जी बना के ले आया, जब तक कोई दूसरा कहे नहीं ना बड़ी अच्छी बनी है, उसको चैन नहीं आएगा। अगर कोई ना बोले, बेचारा योग में हो, मौन में हो, 5 से 10 बजे के वक्त में हो, तो कहेंगे अच्छी बनी है ना, उससे पूछेंगे कि किसी तरह वो बोले, या कहेंगे इतनी अच्छी नहीं बनी। भाव ये है किसी भी तरह से वो बोले कि अच्छी बनी है ना, ताकि मेरी तसल्ली हो, नहीं तो मुझे बदहजमी हो जाएगी कि बनाई तो मैंने लेकिन किसी ने तारीफ नहीं की। इस वास्ते जो हुआ जैसा हुआ उसमें छोटी 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 बात में भी हमारी तपस्या होती है। और तपस्या का आधार क्या होता है कि हमने लक्ष्य क्या है, क्या हमारा लक्ष्य सेवा है, सेवा शिव बाबा की सेवा समझ के करते हैं, यज्ञ की सेवा समझ के करते हैं, अल्प काल की प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, उसका तुरंत समाचार सुना के उसका प्रसाद बांट के दूसरों को और उसका खत्म कर देते हैं, उसका सुख भी जो अंदर का होता है। एक होता है अंदर का सुख, है ना, कई बच्चे होते हैं ना, उनको मुंह में चीनी की गोली दे दो खाने को, कई तो चूसते रहते हैं, कई क्या करते हैं उसको दांत से चबाकर 4 टुकड़े करके फटाफट खा जाते हैं, उनको कहो भी चूसनी है तो वो कहेंगे नहीं नहीं जरा जल्दी जल्दी। तो इसी प्रकार से ऐसा भी स्वाद लेने वाले होते हैं। कि जो अंदर का सुख मिलना है, जो प्राप्ति का सुख मिलना है, सदा का मिलना है, उसको छोड़ के टेम्परेरी के पीछे लग जाते हैं, या जिस चीज में अपना फायदा गिनते हैं वो समझते हैं ठीक है, जिसमें यज्ञ का फायदा है, टोटल फायदा है, उसमें नहीं है। ऐसे ही भय की बात है। आप देखेंगे दुनिया में भी जो खतरनाक लोग होते हैं, खराब काम करने वाले, खून करने वाले, तंग करने वाले, चोर डाकू, वो दूसरे को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, करते भी हैं उल्टा काम, और ऐसा भय पैदा करते हैं जो कोई व्यक्ति उनके खिलाफ बोले ना, पुलिस भी पूछने आए किसने किया है, मालूम भी है, वो लोग डरते हैं बोलने से। ऐसे हमारे ज्ञान में भी है कि जो उल्टा काम करने वाले हैं वो भय पैदा करते हैं, हम तुम्हारा ये कर देंगे, तेरी सेवा हटवा देंगे, अगले साल तुझे यहाँ देखेंगे कौन आने देता है, ये है वो है, उनका काम होता है ऐसा, और उसके भय से डर करके वो लोग जो हैं, ये जीवन मुक्ति नहीं है, ये भी जीवन बंद है, कर रहे हैं ईश्वरी सेवा लेकिन भय के अंदर कर रहे हैं, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी को बताने की सच्ची बात हिम्मत नहीं है, और इसको भी आत्मा की आजादी स्वतंत्रता नहीं कहा जाता। बाबा ने बताया हुआ है कि आप आत्मा हो, आपका नुकसान क्या नुकसान है हमारा, क्या हमारा पैसा चला जाए, हमारी सेवा का चांस चला जाए, हमारा शरीर छूट जाए, ये हमारा नुकसान है, क्या कोई हमारा शरीर छुड़वा सकता, अगर नहीं छूटना छुड़वा सकता, और अगर हमारा शरीर छूटना है तो 10 डॉक्टर भी हमारा शरीर रोक सकते हैं, ये कर्म का ज्ञान है। इसी तरह से हमें जो दुख और सुख मिलता है, जो परेशानी होती है या खुशी होती है, जो हमारा मार्ग सहज होता है या मुश्किल होता है, वो हमारे कर्म के फल से होता है, व्यवहार जो कर्म के आधार पर होता है उससे होता है, या इसने कर दिया उसने कर दिया इससे होता है। देखने में क्या आता है, देखने में आता इसने ऐसे कर दिया मेरे साथ, इसने ऐसे कर दिया, तो हम मनुष्यों के गुलाम बन जाते हैं, इससे बना के रखो, इससे ऐसे करके रखो, रखना तो बना के सबसे है, लेकिन अपने एम से करके हम गुलाम बन जाते हैं। तो हमें कर्मों की फिलॉसफी का पता होना चाहिए, और कर्मों की फिलॉसफी में संगठन है, साथी है, सेवा है, कोई भी चीज है, लेकिन उसके पीछे पावरफुल आत्मा जब भी बनेंगे अगर कर्म की फिलॉसफी होगी। अभी दिल्ली में 7 तारीख को एक स्वास्थ्य की परेड निकली थी, उसका नाम था संपूर्ण स्वास्थ्य यात्रा। वो लोग दिल्ली सरकार के हैं और कुछ और स्वास्थ्य की, एक हार्ट की दिल्ली में बहुत बड़ी फाउंडेशन है, दोनों मिलकर हर साल संपूर्ण स्वास्थ्य मेला लगाते हैं, जिसमें के भिन्न भिन्न संस्थाएं स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देती हैं, चीजें दिखाती हैं, प्रदर्शनियां दिखाती हैं, डॉक्टर लोग होते हैं उसमें, ब्रह्मा कुमारीज का भी हर साल एक स्टॉल होता है, और वो खुद ही मिन्नत करके कहते हैं आप लगाओ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों जैसी निस्वार्थ और अच्छी सेवा कोई करता नहीं। हमारे स्टॉल में बहुत अच्छे चित्र भी होते हैं, समझाने वाले भी होते हैं, इंटरेस्ट लोके लोगों को समझाते भी हैं, और कोई सरकारी स्टॉल होते हैं कुछ औरों के, तो उसमें छोटी मोटी चित्र छोटे छोटे लगा करके गाइड खड़े रहते हैं, हंसते रहते हैं, कोई देख जाए ऐसा होता है। तो इस साल उन्होंने ये सोचा कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 तारीख को सारे दुनिया में मनाया जाता है, स्वास्थ्य के बारे में जागृति पैदा करने का, उसमें एक परेड निकाली जाए। तो आपको पता है 26 जनवरी को भारत में नई दिल्ली में एक रिपब्लिक डे परेड निकलती है ना, आपको कभी भी आपने देखा भी होगा टेलीविजन वगैरह पे, रेडियो पे सुना भी होगा कि वो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जो दिल्ली का बड़ा है वहां से होकर के, फिर कनॉट प्लेस एक बहुत बड़ा है वहां से होकर के, फिर पुरानी दिल्ली में जाती है, घूम घाम के लाल किला जो है वहां जाके खत्म होती है। तो हमको भी कई बार ख्याल आता था कि ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन ब्रह्मा कुमारीज की परेड जो है इसी रूट से निकलेगी, और हम लोग उसमें सारे देशों के भाई बहन, सारे प्रांतों के भाई बहन, माताएं भाई बहन सब जाएंगे, और तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये हमारे मन में एक है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ दिल्ली वालों को एक दिन तो ये करना है। तो उसका एक एक कदम इस बारी हुआ जो जिसमें हम हिस्सा लेते थे, उन्होंने खुद ही फैसला किया कि हम उसी रूट से स्वास्थ्य की परेड निकालेंगे और उसमें ब्रह्मा कुमारीज भी एक अपनी वो झांकी बनाएगी। तो ब्रह्मा कुमारीज ने मान लिया कि हम झांकी बनाएंगे, तो उसमें 103 झांकियां थी उस परेड में, और बहुत सारी झांकियां तो सरकार की थी, कुछ स्कूलों की थी, कुछ नर्सेस की थी, कुछ हॉस्पिटल्स की थी, इस तरह से थी। तो जो सरकार की झांकियां थी और उसमें आग बुझाने वाले इंजन भी थे, एम्बुलेंस भी थे, तरह तरह की लंबी बनाई हुई थी। जो तो स्कूलों की झांकियां थी उसमें बच्चों ने कुछ ड्रेस वगैरह पहने हुए थे, कई बच्चे मच्छर बने हुए थे। फिर वो एक जगह थी जहां जैसे परेड में होता ना राष्ट्रपति के आगे से गुजरते हैं, तो वहां उन्होंने एक स्टेज भी बनाई हुई थी। उस स्टेज में के आगे वो थोड़ा बहुत नाटक भी करते थे, तो मच्छर आपस में बात कर रहे थे हैं कि देखो वो सामने एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी कमीज भी आधी बाजू की है, चलो उसको काटते हैं है? फिर दूसरा मच्छर कहता था अरे देखो वो माता पानी भर रही है, उसने ढक्कन नहीं लगाया उसमें, चलो वहां चल के पानी पीते हैं। फिर एक मच्छर कह रहा था अरे मैं तो इसके अंदर जा ही नहीं सकता, ये क्या चीज है, छोटे छोटे छेद हैं। तो वो कहता था दूसरा मच्छर ये तो मच्छरदानी है, इसमें तुम कैसे जाओगे, ऐसे ऐसे बनाया हुआ था। फिर एक मच्छर कहता था मेरा तो दम घुटा जा रहा है, ये माता क्या जला रही है। उसने कहा ये जो है मॉस्किटो का कॉयल जला रही है, चलो यहां से भागे, ऐसे ऐसे बनाया हुआ था। दो चार अच्छे भी थे इस तरह के, एक वेजिटेरियन शाकाहार के ऊपर था, तो सबसे अच्छा झांकी हमारी थी और इतनी बढ़िया झांकी थी वो। एक तो बहुत बड़ी थी, जो गवर्नमेंट जो रेलवे स्टेशन के ऊपर बड़े बड़े होते हैं ना वैगन, सीधे ही ट्रक पे ऊपर आ जाते हैं जिसको कंटेनर कहते हैं, तो उस कंटेनर वाली वो बहुत बड़ी ट्रेलर लाए थे और उसके ऊपर झांकी भी ज्ञान युक्त बनाई गई थी कि संपूर्ण स्वास्थ्य के 4 कदम क्या है। तो उसमें था कि शुद्ध व्यवहार उसका आधार है, शुद्ध आहार है जिसमें भोजन, कानों का भोजन, आंखों का भोजन और शरीर का भोजन, और उसका तीसरा स्टेप था शुद्ध विचार, उसमें होता ना सी नो इवल, हियर नो इवल, स्पीक नो इवल। और फिर एक था, एक बहन ऊपर को हाथ करके कहती है कि थिंक नो इवल है, अच्छा शुद्ध विचार रखो। फिर उसके ऊपर एक लास्ट था, उसमें चारों दो तरफ पहाड़ी थी, उसमें जैसे रास्ता बनाया हो, जैसे होता ना मंदिरों में जाने के लिए, तो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ता जाता थे स्टेप्स। फिर एक स्टेप ये था शुद्ध संस्कार, कि शुद्ध विचार का भी आधार है शुद्ध संस्कार। और उसके ऊपर 5 बहनें योग में बैठी हुई थी और बाबा के साथ उनका संबंध जोड़ा हुआ था, और ऊपर लिखा हुआ था संस्कार परिवर्तन द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य, ये उसका हेडिंग था। तो ये तो ज्ञान युक्त झांकी थी, कोई समझे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए और लेकिन मेरे संस्कार खराब रहे, ये तो हो नहीं सकता, दवाइयां खाने से तो टेम्परेरी ठीक होगा सदा के लिए। तो ये सुंदर झांकी बनी हुई थी। तो जब वो झांकियां इकट्ठी हुई जहां राष्ट्रपति भवन के आगे, तो उन्होंने फैसला किया कि पहली झांकी हम ब्रह्मा कुमारियों की निकालेंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया थी, इतनी सुंदर थी, और साथ में 300 बहन भाई भी थे जिन्होंने उनके साथ चलना था, इंडिया गेट के आगे तक साथ चलना था, उसके बाद सारी गाड़ियों में जानी थी। तो 2-3 गाड़ियां थी हमारी, एक के ऊपर भी घूमने वाला एक चित्र बना हुआ था चारों युगों का, एक दूसरी गाड़ी भी थी और उसमें भी कुछ चित्र लगे हुए थे, एक में अनाउंसमेंट वाले थे कि संपूर्ण स्वास्थ्य के 4 कदम उसमें बोलते जाते थे। तो वो झांकी सबसे पहले वहां पर आई, उसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री और कुछ एक दीपक चोपड़ा करके है, वो बहुत अच्छा लेखक है, अमेरिका में भाषण करता है, उसके पिताजी जो चोपड़ा थे उन्होंने ही ये शुरू किया हुआ था हार्ट फाउंडेशन, वो थे, कुछ साधु महात्मा भी थे। फिर हमारी झांकी से पहले भी एक और छोटा सा दृश्य था जिसमें एक आदमी अपने दांतों के से एक ना टेम्पो को खींचता है दांतों से ऐसे कटके, पहला पहला वो था, वो तो उसका उसकी कारण से दिखाया गया था, दूसरी हमारी थी। तो उसका उन्होंने वर्णन किया, इन्होंने राजयोग के द्वारा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाता है वो सारा बताया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि वो सारी झांकी हमारी लाल किले तक गई, उसमें अनाउंसमेंट करते गए। पुरानी दिल्ली में तो लोगों ने मकानों के ऊपर से आके देखा, और उसके पश्चात टेलीविजन पर भी एक तो दिल्ली का न्यूज आता है 7 बजे, और एक नेशनल जो सारे इंडिया में आता है 8:30 बजे, उसमें नेशनल टेलीविजन में भी वो दिखाई गई, और खास हमारी ही झांकी उसमें ज्यादा दिखाई गई, और एक और भी कोई जी टीवी है उसमें भी हमारी झांकी दिखाई गई, लोगों ने ऐसा बताया। तो इस प्रकार से अच्छी सेवा हो गई और ज्ञान युक्त सेवा हो गई। तो कहने का भाव ये है कि जो भी आप शुद्ध संकल्प रखेंगे, बाबा ने भी जो शुद्ध संकल्प रखे थे ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, और अब तो बाबा ने कह दिया है कि आप मेरे बच्चे बन गए, ठीक है, अब आप जाना चाहो तो भी ठीक है, ना जाना चाहो तो भी ठीक है, मैंने तो आपको लेके जाना है, ठीक है ना। अब बाबा ने हमको लेके जाना है, पिता है तो लेके तो प्यार से ही जाएगा, फिर भी कहता है कि कोई प्यार से बहुत प्यार से आनाकानी भी करेगा उसको भी मैं ले जाऊंगा, तो क्यों ना हम खुशी खुशी चलें। उसका सिंपल तरीका यही है कि हम अपनी खुशी को दूसरे की खुशी छीन कर, कहा जाता है ना छीन लिया तो काहे के बराबर होता है, रक्त के बराबर, दूसरे का अधिकार, दूसरे की खुशी, दूसरे की इच्छा, उसको छीन कर, दूसरे के हक को, दूसरे की नकली शिकायत लगाकर, उसकी छोटी बात को बड़ा करके, उसके लिए किसी का दिल खराब करके हम खुद खुश हों, वो खुशी असली नहीं है। और साधारण खुशी भी क्या है कि चलो वो अपने घर खुश रहे, हम अपने घर खुश रहे, तुम अपने राजी रहो, ये भी नहीं है। बोल चाल ना करें या आपस में छोटी मोटी बात लड़के अपने आप को भारी कर लें। आप देखेंगे कुली तो वजन ट्रंक बिस्तरे से भारी होता है, आप ब्राह्मण कैसे भारी होता है, एक संकल्प से ही। कोई छोटी सी बात हो गई, मान लो किसी कोई चीज बट रही है, ना मिली, देर से मिली, या मैं देर से पहुंचा, या वो खत्म हो गई, तो या आधी मिली, तो बस ऐसे लगेगा मेरी सारी बादशाही, मेरे 21 जन्मों की राजाई, बाबा का सारा दिया हुआ ज्ञान सब मेरा छिन गया। टेम्परेरीली जैसे किसी के आग हो गया, आगे अंधेरा आ जाए ना, या सूरज के आगे काला बादल आ जाए, बस सब छिन गया। ऐसे लगे कि हाँ कुछ नहीं है मेरे जीवन में। थोड़ी देर में जब वो बादल हट जाएगा फिर कहेंगे हाँ है तो सब कुछ भाई, इधर भी पड़ा इधर भी पड़ा। इसलिए ये भी नहीं करना है कि हम एक सेकंड के लिए भी क्यों खोएं, क्योंकि आप देखेंगे हर चीज की रेखाएं हमारे चेहरे पर आ जाती हैं। अब बाबा ने कहा हुआ अपनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बनाओ, तो अगर सारे दिन में व्यर्थ की रेखाएं होंगी अंदर, या कोई किसी का उल्टा सीधा की होगी, या कहीं ब्रेक कमजोर होगा, या कुछ खुशी बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, उमंग उत्साह दूसरे का और अपने का, या दिनचर्या ढीली बीली करेंगे, तो पहले तो आपकी खुशी घटेगी, नकली खुशी होगी, हैं? नकली मुस्कुराएंगे, सब कहेंगे हंसो तो हंसेंगे, एक होता दिल से हंसते ही रहो वो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ नकली तो करना ही नहीं है। तो अपने ही फायदे के लिए जो बाबा ने प्रकाशन बताए हुए हैं, सिंपल, कोई खास मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, जो आपकी दिनचर्या है उसको ठीक तरह से करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें, वक्त पे हर काम करें। अगर आप बिना घड़ी के, सतयुग में तो घड़ी होगी नहीं, होगी घड़ी सतयुग में? आज भी पंछी जो होते हैं वो घड़ी बांधते हैं क्या? आप देखिए सुबह जाके देखिए पंछी क्या कतारों में डिजाइन बना के, लाइनें लगा के, एक दूसरे से आगे होते पीछे होते खेलते खेलते जाते हैं, हैं? फिर शाम को देखो पंछी क्या करते हैं, फिर वापस आ रहे होते हैं उसी तरह से सैर करते हुए, लाइनें बनाकर, कोई इधर जाता कोई इधर, फिर लाइन में लग जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी अपनी दिनचर्या को बिना घड़ी के अगर यूज करें, और सचमुच अपने संकल्प को घड़ी रखें, और हर चीज को सिंपल है, ना स्पीड ज्यादा करें ना स्पीड कम करें। क्यों कि किसी ट्रैफिक में आप जा रहे हो, जिस स्पीड पे ट्रैफिक जा रहा है अगर आप उससे ज्यादा स्पीड करोगे तो टक्कर मारोगे आगे वाले से, और अगर कम करोगे पीछे वाला या तो हॉर्न बजाएगा या टक्कर मारेगा, अगर जल्दी करो जल्दी करो, वो तो दिखने में आता है ना। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ भी ऐसे ही है, हमारे आगे भी है पीछे भी है। अगर हम ठीक तरह से चलेंगे तो ना किसी को डिस्टर्ब करेंगे और मैक्सिमम स्पीड तो वही है।
अच्छा, ओम शांति।